मुंबई रावत मेंशन। समर्थ की गाड़ी एक ब्रेक के साथ मेंशन के सामने रुकी और थका हारा समर्थ दरवाज़ा खोलकर धीमे कदमों से अंदर आया। वहीं गाड़ी में बैठी त्रिशा जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही थी, क्योंकि उसने समर्थ को ज़बरदस्ती शॉपिंग मॉल का टूर भी करवा ही दिया था। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने करीब 5-6 बैग भरकर शॉपिंग की थी। वो उन बैग्स को संभालते हुए अंदर आई। वहीं समर्थ, जो इतना ज़्यादा परेशान था, अंदर जाकर उसने जैसे ही कल्याण सिंह से सुना कि अमर खाना बना रहा है, उसकी पूरी थकान दूर हो गई और वो एक्साइटमेंट में ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, वाह, ये हुई ना मिस ब्यूटीफुल हुकूमत बीवी की। इतने दिन से सुबह शाम बस उन्हीं से काम करवाया जा रहा था, लेकिन आज उनके मिस्टर पतिदेस खाना बना रहे हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसे तो हेडलाइन होना चाहिए था टीवी की। उसे ऐसा बोलता देख त्रिशा का चेहरा उतर गया। वो जितनी खुश होकर आई थी, उसकी ऐसी बात सुनकर उसकी सारी खुशी जैसे हवा हो गई। उसने जल्दी से हॉल में आकर अपने हाथ में पड़े बैग को सोफे पर पटकते हुए कहा, क्या अमर खाना बना रहा है? लेकिन क्यों, जानवी को क्या हुआ? कल्याण सिंह ने आराम से कहा, बेटा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैंने अपने पोते को खाना बनाना भी सिखाया है, क्योंकि यहाँ पहले से ही कोई फीमेल नहीं थी, तो अब अगर अमर जानवी के लिए खाना बनाना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं रहे हैं, और वैसे भी वो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहा है, बाकी सबके लिए तो मेड ही खाना बनाएंगे, तो ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहे हैं हम उसे। ये सुनकर त्रिशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने बैग्स को वापस उठाते हुए तेज़ कदमों से अपने कमरे में चली गई। कल्याण सिंह ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, इसे क्या हुआ है? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? और मंदिर जाने में इतना वक्त किसको लगता है? तुम सुबह गए थे और रात को 9:30 बजे वापस आ रहे हो। समर्थ ने सोफे पर धम से बैठते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कल्याण सिंह जी, वो मोहतरमा शॉपिंग मॉल गई थी, उससे पहले ब्यूटी पार्लर। इन लड़कियों की सोच ले मुझे समझ नहीं आती, उसे ब्यूटी पार्लर में इसने पूरे 4 घंटे लगाए हैं और मुझे तो कुछ खास फर्क दिखा भी नहीं, जैसी थी वैसी ही निकल कर आई थी, हम की परी बनकर नहीं आई थी, बस पैसे सूखने होते हैं। कल्याण सिंह ने एक लंबी सांस बढ़ाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, लड़कियों को सजना संवरना भी चाहिए, ये उनका एक कमी है, तुम्हें उससे इस बात पर झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, और पैसों का जिक्र तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गए? समर्थ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मंदी हाँ में हिलाते हुए कहा, जी जी कल्याण सिंह जी, समझ गए, आप ऐसे ही बोलते रहे तो आपकी सारी बहू का कल्याण हो जाएगा और पोतों का सर्वनाश, क्योंकि आज जितने पैसे लगे हैं उस पर अगर वैसा हफ्ते में एक बार होने लगेगा तो मैं जितना कमाता हूँ उतना वो एक साल में उड़ा देगी, और उसके बाद हम दोनों कंगाल होकर सड़क पर भीख मांगते मिलेंगे। कल्याण सिंह जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो इसमें तुम्हारी नाकामी है, उसकी कोई गलती नहीं है, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। बिजनेस का नाम सुनकर समर्थ ने जल्दी से कहा, विश्वास राव, मेरी उसके साथ दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी मुझे किसी ने कॉल करके बताया कि विश्वास राव अब मेरे होटल वाले बिजनेस में टंगरा रहा है। मैं एक ना एक दिन भूल जाऊंगा कि वो मेरे ताऊजी लगते हैं और मैं कत्ल कर दूंगा उसका। कल्याण सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, हर बार तुम्हें ही क्यों पॉइंट आउट किया जाता है? सब विश्वास राव के बारे में गलत न्यूज़ तुम्हें ही क्यों देते हैं? अमर के पास कभी कॉल नहीं आया, दीक्षांत के पास कभी कॉल नहीं आया, रजत के पास भी नहीं, और ना मेरे पास। समर्थ ने अपना सर पटकते हुए कहा, शायद उनकी दुश्मनी मुझे कुछ ज़्यादा ही गहरी है। कल्याण सिंह ने कुछ और सोते हुए कहा, मुझे लगता है सबको पता है तुम हम में सबसे ज़्यादा इमोशनल हो, जिसकी वजह से तुम्हें ही पॉइंट किया जा रहा है। अब तुम विश्वास राम को छोड़ो और उस आदमी का पता लगाओ जो तुम्हें ऐसी न्यूज़ ला कर देता है, क्योंकि कमी रही है, विश्वास राव फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, वो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता है, मैंने उससे पर्सनली बात की है। कहीं ना कहीं ये सच भी था, समर्थ कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था, उसे बहुत छोटी बातों का भी बुरा लग जाता है, यहाँ तक कि विश्वास राव को आज भी एक फैमिली की तरह देखा है। अमर कभी भी विश्वास राव से उतनी हमदर्दी नहीं रखता था जितनी सामर्थ रखता है। समर्थ नाम हमेशा हिलाते हुए कहा, हाँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद हम डिनर करते हैं, कल सोचेंगे इस बारे में। दूसरी तरफ रावत कॉरपोरेशन। दीक्षांत अपनी केबिन से निकलकर सीटी बजाते हुए उस तरफ आ रहा था जहां माही का केबिन बना हुआ था। उसने माही को देखा जिसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर काम कर रही थीं, तो कभी उसकी नज़रें जल्दी जल्दी फाइल्स पर घूम रही थीं। माही ने जैसे ही महसूस किया कि कोई उसे लगातार देख रहा है, उसने आँखें उठाकर देखा और सामने दीक्षांत को देखकर उसने थोड़ा सहमते हुए कहा, सॉरी सर, मैं जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगले 2-2.5 घंटे में ये सब कम्प्लीट हो जाएगा। दीक्षांत ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड गर्ल, तुम्हारी यही जॉब है कि तुम सारा काम टाइम से करो, चाहे उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम ही क्यों ना लेना पड़े, और मुझे लगी है भूख, तो मैं जा रहा हूँ घर, जब तुम्हारा काम हो जाए तब तुम आ जाना, मैं यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड छोड़कर जा रहा हूँ, जब तुम्हें जाना हो तो उसको बोल देना, फिर वो ऑफिस को ताला लगा देगा। माही ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और दीक्षांत मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ गया। उसके जाते ही माही ने अपना सर दोनों हाथों से पटकते हुए कहा, पहले मुझे एक कॉफ़ी की ज़रूरत है, उसके बाद मैं ये सारा काम करूँगी। दीक्षांत वापस शरावत मेंशन आ चुका था और अब सारी फैमिली एक साथ डिनर टेबल पर मौजूद थी। रजत ने दीक्षांत को देखते हुए कहा, मैंने सुना तुमने माही को अपनी कंपनी में जॉब दी है।
ये सुनकर सपना हैरानी से दीक्षांत को देखा तो दीक्षांत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ उसे जॉब की काफी जरूरत थी तो मैंने सोचा मैं हेल्प कर देता हूँ। वैसे भी वो भाभी जान की इतनी अच्छी दोस्त है तो हम इतनी हेल्प तो उसकी कर ही सकते हैं। उसकी इस बात पर अमर को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपनी प्लेट से एक बाइट बनाकर जानवी के मुंह में देते हुए कहा, बताओ कैसा बना है। जानवी को सबके सामने अमर के हाथों से खाना खाने में शर्म आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छा बना है। उसका लाल चेहरा अमर को और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसने उसका कर छूटते हुए कहा, अगर कुछ कमी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अगली बार से उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। उन्हें ऐसा करता देख रजत ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, अमर ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है। अमर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो आप भी अपने कान बंद कर सकते हैं, अपनी नजरों पर काला चश्मा लगा सकते हैं, मैं तो अपनी बीवी को यही खाना खिलाऊंगा। उसका ये बिहेवियर देखकर त्रिशा के दिल पर जैसे अंगारों की बरसात हो रही थी। उसकी आंखें भी जलन के मारे लाल हो चुकी थीं और ये सब समर्थ अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बीवी किसी और को अपनी बीवी से प्यार करते देख इतनी किड़ रही है, पर वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। कुछ ही देर में उनका खाना खत्म हो गया और सब अपने कमरे में चले गए सिवाय दीक्षांत के, क्योंकि उसे तो अब माही की खराब कंडीशन देखना था। आखिर उसका फेवरेट शो वो कैसे मिस कर सकता था। वो मुस्कुराते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठकर रावत कॉर्पोरेशन के लिए निकल गया। उसने घड़ी को देखा जो 11:30 बजाने का इशारा कर रही थी।
वही माही भी ऑफिस से निकल चुकी थी, लेकिन बाहर निकलते ही उसे रियलाइज हुआ कि इतनी रात को उसे टैक्सी नहीं मिलेगी और उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। रात के सन्नाटे में उसे बहुत डर लगता था, फिर भी वो धीमे कदमों से चलते हुए ऑफिस से बाहर आ गई और फिर मेन रोड की साइड में बने फुटपाथ पर चलने लगी। ज्यादा अंधेरा नहीं था क्योंकि आसपास काफी गाड़ियां भी चल रही थीं, जिनकी हेडलाइट से रास्ता काफी साफ नजर आ रहा था। लेकिन मुंबई का माहौल कितना खराब है ये सबको बखूबी पता है, और माही को इस बात का डर सताया जा रहा था। वो 10 मिनट ही चली थी कि अचानक उसे गली में घूमते 3 लड़के दिख गए जो आपस में मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। उनकी हंसी पूरे गलियारे में गूंज रही थी। उन्होंने जैसे ही किसी के हील की टकटक की आवाज सुनी, तीनों ने मुड़कर माही की तरफ देखा और मानो इस पल माही की पूरी बॉडी सुन पड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि उन सब की नजरें उसे पर पड़ें।